Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor, Amrish Saxena. And
नमस्कार आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. रोज की तरह आज भी हम आपके लिए देश विदेश की आर्थिक और व्यापारिक खबरें लेकर हाजिर हैं. प्रमुख समाचारों का हम विश्लेषण भी करेंगे. खास खास खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ विजय भूषण. विजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार.
पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव.
The Indian benchmark indices remain in consolidation mode after hitting record highs in the previous session. Sensex down 220 points, Nifty below 22,900. Goldman Sachs raises India's GDP growth forecast to 6.7% for 2024. And oil prices steadies at OPEC plus. The restraint balances interest rate concerns.
घरेलू शेयर बाजार कल के रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद आज स्थायित्व की मुद्रा में दिखाई दिए. सेंसेक्स 220 अंक गिरा, निफ्टी 22,900 अंकों के नीचे चला गया. गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया और ब्याज दरों से जुड़ी चिंताओं में संतुलन को लेकर ओपेक देशों के संयम के बाद कच्चे तेल के मूल्यों में स्थिरता दिखाई दी. और आज की पहली खबर, पिछले सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद घरेलू शेयर बाजारों में आज दिन भर उतार चढ़ाव का रुख रहा. अच्छी शुरुआत के बावजूद बाजार ऊपर नीचे होते रहे और आखिरी घंटे में बिकवाली के चलते सूचकांक दिन के सबसे निचले स्तर पर आकर बंद हुए. बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 220 अंक यानी 0.29% की गिरावट के साथ 75,170 अंकों पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 44 अंक यानी 0.19% गिरकर 22,888 अंकों पर बंद हुआ. सेंसेक्स में शामिल शेयरों में एशियन पेंट, विप्रो और जेएसडब्ल्यू स्टील लाभ में रहे. दूसरी ओर पावर ग्रिड, एनटीपीसी और टाटा मोटर्स के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स 0.63% गिरा जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट 1% से अधिक की रही.
After hitting record highs in the previous session, the Indian benchmark indices entered consolidation mode today. Despite a positive start, the market fluctuated between gains and losses throughout the session. However, selling in the last hour pulled the indices down to their lowest point of the day. At close, the Sensex was down 220 points or 0.29% at 75,170 and the Nifty was down too by 44 points, or 0.19% at 22,888. From the Sensex basket, Asian Paint, Wipro and JSWC were among the major gainers. In contrast, Power Grid, NTPC and Tata Motors were among the biggest laggards. In the broader market, at the BSE Mid Cap Index was down 0.63% and Small Cap Index shed over 1%. In the sectoral indices at the BSE, most sectors experienced pressure with realty and energy being the top losers, whereas the healthcare sector gained 0.29%.
और विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83.18 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में अंतिम समाचार मिलने तक नीचे गिरकर 104.43 पर कारोबार कर रहा था. तो जैसा कि शेयर बाजारों का हाल हम विजय भूषण जी देख रहे हैं, लगातार ही ऊपर की तरफ जाते जाते आज थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और दिन भर जो उतार चढ़ाव चलता रहा, तो अब आपको क्या लगता है कि शेयर बाजार आज जिस तरह से बिहेव कर रहा था और अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको क्या लगता है कि ये रेंज बाउंड ही रहेगा, अब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे लेकिन 75,000 के आसपास ही चलता रहेगा कि कुछ और बड़ा बदलाव आपको दिखाई दे रहा है?
देखिए, पिछले हफ्ते हम लाइफ टाइम हाई पे थे। जब लाइफ टाइम हाई के बाद कुछ कंसोलिडेशन तो होता ही है और वो बहुत अच्छा रहता है मार्केट के लिए, लेकिन ये जो हफ्ता है इसमें दो दिन बाद मतलब बृहस्पतिवार को ये हमारा इस महीने का सेटलमेंट भी है, तो उसकी वजह से जिस दिन सेटलमेंट होता है और क्योंकि तो उस वजह से भी थोड़ा बढ़ जाता है उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर। तो ये एक चीज जरूर है जिससे ये जो आप उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं ये अभी जारी रहेगी, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। अगर जब आपका जब आप खुद ही बता रहे हैं कि सिर्फ जो अपने स्मॉल कैप शेयर्स है उसमें 1% आया है, बाकियों में तो बहुत उसका कम फर्क है। और पिछले दो दिनों में दोनों बारी ऐसा हुआ है कि मार्केट अच्छा खुला है और बाद में जाते जाते और आखिरी के जो है एक घंटा आधा घंटे में मार्केट गिरा है। तो हम लोगों को ये लगता है कि थोड़ा क्योंकि ये नॉर्मली फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग बाद में ही आती है तो वहां पे कुछ सेलिंग हो रही है और क्या और थोड़ा बहुत मार्केट पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो मेकअप हो रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत इसके अंदर बदलाव आ सकता है क्योंकि सेटलमेंट की का आखिरी दिन अपना बृहस्पतिवार को होगा।
एब्सोल्युटली मिस्टर भूषण, यू जस्ट मेंशनड अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड अपार्ट फ्रॉम द प्रोग्राम वी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट FIIs एंड द DIIs, द फॉरेन एज वेल एज द डोमेस्टिक मार्केट्स और द इन्वेस्टर्स मार्केट इन्वेस्टर्स दैट वी हैव। And we were talking about that it's usually related to the large cap markets, although the broader markets are always considered as a benchmark of how the earnings are coming in. What do you think, that this is just merely a technicality, that the markets are showing a red because after an all-time high, a little correction is always seen, or this will be the trend that till the election results are announced or for a range of reasons globally or domestically these markets will tumble or maybe go up? What do you think?
We are just before a very big event.
Absolutely.
And as chance would have it, it is going to happen on a, you know, when your exit polls come, that will happen on a Saturday evening and Sunday. So the impact of that will be felt only on Monday. Prior to that, the narrative has been changing. And so I think people and seeing the new high being formed in the previous week, I think there is more optimism. And even after the settlement, there could be, I mean, we are personally speaking, I am thinking that maybe on the third, the market may be on the lower side. However, as you know, if exit polls, paint a picture of any single party coming in with a large majority, then of course the situation will change.
लेकिन विजय भूषण जी, अगर जिस तरह से मार्केट मोर और लेस जिस तरह से बढ़ा है देखा तो बढ़त की तरफ ही है क्योंकि 75,000 का आंकड़ा पार कर गया, तो बेसिक कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने 75,000 तक पहुंचाया? क्योंकि इलेक्शन की जो दौर चल रहा है उसका भी असर है, तो क्या फंडामेंटल्स हमारे बहुत स्ट्रांग हैं इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या जो रिजर्व बैंक ने जो डिविडेंड्स दिए भारत सरकार को ये उसका इम्पैक्ट के रूप में हमें ये बढ़त दिखाई दे रही?
मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक ने जो ये कदम उठाया है उससे बहुत फर्क पड़ा है हमारा जो ब्याज दरों में। वो ब्याज दरों में उससे ये क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट को उतनी ज्यादा जो है मार्केट से जो ये बोरोइंग करते हैं वो करनी नहीं पड़ेगी। तो जो जिससे हम लोग इसको नापते हैं 10 साल का जो 10 ईयर जो है उसमें करीब 7.15 से वो गिर के करीब 7.4 की उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट आ गया। तो ये एक उसकी वजह से जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मार्केट के लिए अच्छा रहता है
जी।
और दूसरा ये है कि इसमें अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनियों के इस बारी जो नतीजे आए हैं वो औसतन अच्छे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मार्केट में होता है। और तीसरा कारण ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं, उनके पास जितना पैसा आ रहा है और उनको डिप्लॉय करना होता है, मतलब उनके ऊपर भी ये है कि आपको पैसा मिला है तो आप कैश में नहीं रख सकते
जी।
आपको कम से कम 90% डिप्लॉय करना पड़ता है, तो उसको देखते हुए भी वो पैसा मार्केट में लगता है। तो अप्रैल के महीने में करीब 44,000 करोड़ आया, जो कि पिछले पूरे साल का जो पूरे साल में करीब 2.9 करोड़ आया था, तो 17.5 हजार की जगह जो हमारा औसतन पिछले साल लगा, इस बारी 44,000 करोड़ आया। अभी मई के तो अभी हमारे पास वो आएंगे, लेकिन ये जरूर पता है कि जो SIP है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें 20,000 करोड़ अब आ रहा है, तो वो फिगर तो अपने वहां पे रहेगा। अब बाकी जो है कितना निवेश हुआ है वो पता चलेगा। साथ के साथ इस समय अगर फिगर आएंगे तो जो अपने FIIs हैं उनकी सेलिंग ही आएगी। अब कितनी सेलिंग होती है वो बदलता रहता है, हो सकता है कि वो अपने आखिर में 31 तारीख को वो अपना पूरा एक अलग तरीके से काम करे, वो मार्केट उसमें चेंज हो जाए, बट मार्केट का ट्रेंड तो अब 3 तारीख से ही अगर बदलेगा
जी। जो FIIs की आप बात करें, लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो संभाल ही लेंगे मार्केट को, वो FII से मुझे लगता नहीं कि ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं?
मेरा ये है कि मार्केट की जो आप समझ लीजिए डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। अब आपको ये हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसे कारणों की वजह से, और आपको इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि उसमें उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन जब ये लोगों को लगेगा कि स्थिर सरकार आ रही है तो हम लोगों का अनुमान ये है कि आज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं वो पैसा दोबारा से उनका निवेश आएगा, तो ऐसी परिस्थिति में मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो तो पैसा लगा ही रहे। तो इसलिए जैसा वो कहता हूं मैं, डबल इंजन की जो सरकार होती है, डबल इंजन का पुश मार्केट में आएगा
जी। एब्सोल्युटली। सो व्हाट यू सेइंग इज दैट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट स्टेबिलिटी इज द वर्ड दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड, बिकॉज बीट द ड्रॉइंग ऑफ मनी बाय FIIs, स्टिल द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और द डोमेस्टिक पीपल हु आर pouring in the money into the markets, they will not just compensate for that, but it will be a surplus that we will see. Could you explain it a little more using some figures that we have during the past year or anything, so that we know that whatever was put in by the foreign investors or whatever was pulled out later was more than compensated in surplus by the domestic investors?
Well, this has been the story since 2021. In those 2 years, 2021 to 2023, foreign investors sold about 4,70,000 crores of stocks. So after that, and this was more than compensated by the domestic investors who put in the same amount of money. And in 2023-24, they sold, but it was a small quantum of about 14,500, against which the domestic investors poured in about 2,09,000 crores, which, by the way, really helped the market, and we saw that the large cap index went up by 29% as a result. So because the selling by FII is reduced, and the domestic investor, they have been investing over 2 lakh crores in last 3 years. So they have been there. And if April is any indication, this will go up. So I think gives very favorable technical factors for market to sustain and to go up in spite of the FII selling. Just to give you a figure, the FII holding has come down from 25% of market capitalization. It has come down to 18%. So 7% they have actually reduced, and the market really hasn't felt that kind of pressure. So I think domestic investors have come of age.
लेकिन आपको क्या लगता है अगले हफ्ते में अगर इसी तरह से चलता रहा तो कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लग सकता है और लग भी रहा है कई बार कि वो मुनाफा वसूल लें क्योंकि हो सकता है कल को बाजार ज्यादा गिर जाए तो मुनाफा वसूली का क्या रोल रहेगा बाजार में?
नहीं, मुनाफा वसूली का तो रोल बाजार में होता ही है, लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि अगर उनको मुनाफा वसूली करनी है तो इलेक्शन रिजल्ट से पहले करेंगे। अब एक बार इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, जब अगर वो बहुत ही जो एक्सपेक्टेशन है उसके विपरीत हुआ तो उनकी उस तरह की सेलिंग आएगी। और मेरे को एटलीस्ट जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में चल रहा है, जो कि अब जिसका आंकड़ा 20,000 करोड़ महीने का हो गया, वो मेरे को नहीं लगता है उसमें ज्यादा फर्क आएगा।
मिस्टर भूषण, वी हैड रिसेंटली सीन सम downfall in especially the small cap indexes and billions of dollars worldwide were wiped out just like that. Although the same sum has been gained back, what do you think? The froth clearing, as it was being said at that point of time, what exactly was it? And did it really have an impact, or the Indian market's stability kind of stabilized all these things and it did not impact our domestic investors too much?
No, I think this whole talk about froth for especially small cap shares, it did have an impact. It went down, but once people saw the results which came from mid April till the end, which actually can come right till the end of May. So seeing those results, the confidence came back. And the index, in fact, performed in April. The small cap index went up by 10%.
Absolutely.
After a fall, of course, after a fall before that. So I think the worries at the moment are not there. But as you know, this can change because the market is dynamic. And one should always, we tell investors, be ready that the market can take a 10% dip.
जी, और विजय भूषण जी, जिस तरह अभी मार्केट चल रहा है तो अगर रिटेल इन्वेस्टर्स आज की तारीख में बाजार में निवेश करने के बारे में सोचें तो आप कौन से सेक्टर्स उनको सुझाव देंगे कि जिनमें लुक्रेटिव होगा थोड़ा निवेश करना?
जहां पे अभी गवर्नमेंट ने जिस समय जिस तरह से बात की है उसी के ऊपर ये ज्यादा निर्भर रहेगा
जी।
हम लोग जो सेक्टर्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर तो एवरग्रीन सेक्टर है, वहां पे तो पैसा इसके अंदर आएगा ही। साथ के साथ मेरे को ये लग रहा है कि अभी जो अपने ऑटो सेक्टर में हमारे को अच्छा इसमें बढ़त मिल सकती है, एंड स्पेशली ऑटो से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग।
And I believe that these two sectors that you've just mentioned, auto as well as infrastructure, have been the cornerstone of India's development story that we've been progressing so soon, because these two sectors, especially from the government and from the private sector point of view as well, both have been playing a very, very important role and have been spreading throughout with a green signal that yes, even in the future, they will continue to grow very well.
और चलते हैं एशिया के अन्य बाजारों और यूरोपीय बाजार का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के सभी प्रमुख बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.35% बढ़ा और गिरावट दर्ज करने वाले शेयरों में शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.47%, जापान का निकेई 0.11%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.16% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी मामूली रूप से गिरा। प्रमुख यूरोपीय बाजार भी गिरावट के बीच कारोबार कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक फ्रांस का कैक 0.59%, लंदन का फुटसी 0.21% और जर्मनी का डेक्स 0.03% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। विजय भूषण जी, आप क्या कहेंगे? एशिया के लगभग सिंगापुर को छोड़कर सभी बाजारों में गिरावट दिखाई दी और ये गिरावट हमें यूरोप के सारे बाजारों में भी दिखाई पड़ रही है। कौन से ऐसा फैक्टर आपको लगता है कि ये अक्रॉस द बोर्ड इस तरह से बाजारों में गिरावट हम देख रहे हैं?
मेरे को लगता है ये गिरावट जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये इतना उतार चढ़ाव तो नॉर्मल दिन में ही आ जाता है, तो वो मतलब कारण तो मैं बड़ा कई बता सकता हूं कि साहब इसराइल और इनका जो है वो अब उसमें ऐसा लग रहा है कि ये तनाव बढ़ जाएगा, लेकिन असल में ये एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कोई भी इसमें ट्रेंड, ये ट्रेंड कोई नहीं दर्शाता है।
जी,
सो बेसिकली इट इज जस्ट बीटिंग द ट्रेंड्स, और इट्स नॉट एग्जैक्टली एनी ट्रेंड ऑफ एनी सॉर्ट, बट इट्स जस्ट अ बेसिक जेनरिक थिंग दैट कीप्स हैपनिंग, और दिस मच ऑफ वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज देयर।
करेक्ट, सो वन शुड बी आई मीन यू शुड नॉट take it, you know, that there is suddenly the markets have started falling.
Absolutely. So the investors have nothing to worry, and they should know that their money is secure. Talking about volatility, we've just seen that the volatility index, the VIX index, has crossed 24 recently, and it has been in news. What do you think, at least from a layman point of view, and if you want to explain to our listeners, what exactly is the volatility point of view, and do they really have to worry about it, or is it just something that is used by professionals or from a technical point of view, that's all?
I think retail investors and surely are most of the people who listen to this show, they don't need to be worried so much on the volatility index. If the basic market is moving in a satisfactory manner for them. So I don't think professional traders actually price some of the options based on the volatility index. So it serves a purpose, but not, it doesn't, you know, it can only, if the volatility index is going up, you can brace yourself for, you know, larger either rise or fall in the markets.
Absolutely. And now let's take another view at some of the stories that we have. The U.S. stock market was closed yesterday in observance of Memorial Day. Goldman Sachs has raised India's GDP growth forecast to 6.7% for calendar year 2024. The latest data released by the bank said they expect a sustained growth momentum with additional fiscal space on account of a bumper dividend transfer from the RBI. The financial company said that in India, growth momentum remains strong and core inflation is expected to bottom out in April to June. The report also came on a day when IMD confirmed its forecast of above average monsoon rains this year, which are expected to spur production in the agricultural sector that was hit by erratic weather last year. And talking about crude oil, oil prices steady today as the prospect of OPEC Plus maintaining oil supply curbs at its June 2nd meeting and hopes of strong U.S. summer fuel demand balance concern about higher for longer U.S. interest rates. The Brent crude was up 0.13% to $83.21 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI crude futures rose 1.44% to $78.84 per barrel. Mr. Bhushan, talking about oil, which has always been a matter of concern for so many investors, which they feel that it is a really big factor to influence markets, whether it's domestic or global. What do you think has been the continuous trajectory which our country or global companies or production companies have followed? Because oil has not seen too much of volatility of late, and the markets are steadied somehow.
So actually this, you know, oil is something which has not caused much concern recently. Only when oil went above $90, that is the time when there was a concern, because we import a large quantity of our requirement. So, but I think at this level around, you know, 83 plus minus from 82, I would say 82, 87, I don't think that is something which really bothers, you know, any analyst or makes a major difference as far as, you know, India's fiscal position is concerned. It's only when, if it goes above that, that there is some concern. And of course, if you are lucky and it's below that, that's a very good फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर फिस्कल पोजिशन।
जी बिल्कुल, और गोल्डमैन सैक्स वाली स्टोरी में हमने अभी भी जाना कि उनके हिसाब से इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6.7% है, जिसको बढ़ा दिया गया है। अब ये जो रेट है, इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि गोल्डमैन सैक्स बहुत खुश है, या वो कहते हैं कि आरबीआई जिस तरीके से एक बहुत ही पॉजिटिव रोल निभा रहा है हमारी इकोनॉमी में। और हाल ही में हमने ये भी खबर पढ़ी कि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं 648 बिलियन यूएस डॉलर्स को क्रॉस कर गए हैं, विच वॉज एन ऑल टाइम हाई। क्या लगता है, क्या इस चीज का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट्स पे?
वो देखिए, पिछले हफ्ते हम लोगों ने लाइफ टाइम हाई अचीव किया था।
yes,
तो अगर आप गोल्डमैन सैक्स को पढ़ लें तो आप तो सोचेंगे मैं कल ही जाके कुछ मार्केट में निवेश करता हूं।
जी जी, लेकिन विजय भूषण जी, जो ये 6.7 का जो फोरकास्ट किया है तो वो गोल्डमैन सैक्स ने, ये आपको कितना रियलिस्टिक लगता है जो अर्थव्यवस्था के अगर हम सारे और फैक्टर्स को भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये 2024 के कैलेंडर ईयर के लिए है, तो अभी आधा अगले 6 महीने बाकी हैं, तो अगले 6 महीने में हमारी जो अर्थव्यवस्था का पूरा जो विकास का मोमेंटम है वो कितना होगा, और क्या हम इस टारगेट या इसके ऊपर के भी टारगेट को अचीव करने की स्थिति में होंगे?
देखिए, ये तो अब ये निर्भर करेगा कि हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स कैसे आते हैं और क्या पॉलिसी वो उस पर उनका ध्यान जाता है। काफी बात चल रही है रिफॉर्म्स की, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जैसे चार चीजें वो बोलते हैं, लैंड, लेबर, फाइनेंस एंड एंटरप्राइज। आई थिंक फाइनेंस और एंटरप्राइज में तो अब हमारा काफी कुछ पोजीशन अच्छी है, लेकिन लैंड और लेबर में रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर हमारे को एक एडिशनल पुश देना है, वो पॉलिटिकली थोड़े से उसमें ध्यान देना पड़ता है। तो अगर उधर जो नई सरकार है वो उस पर अगर रिफॉर्म्स लेके आएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और जो जैसे अभी जो रिजर्व बैंक ने पैसा दिया, तो इससे फिस्कल डेफिसिट को, हम वित्तीय घाटे को भी काफी हद तक पाट पाएंगे, जो भी अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आप क्या सोचते हैं?
नहीं, वो तो है, और साथ साथ जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट लगा रही है उनके हाथ भी जरा खुलेंगे उसके लिए, और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट करीब ढाई टाइम का होता है। तो अगर लोग उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि अगर 2 करोड़ 11 लाख दिया है तो इसका इम्पैक्ट 5 लाख करोड़ का है।
So we can easily say that the heavy spending that the government is doing right now in the infrastructures, or which could be a major point of concern for many people, or in their minds they feel that it is not necessary, this will have a very positive and a very long term multiplier effect in the years to come.
Yes, and that's showing in the markets.
In the markets as well.
जी, और चलते हैं अगली खबर की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में वायदा कारोबार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का मूल्य 109 रूपये की गिरावट के साथ 71,900 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। जुलाई अनुबंध के लिए चांदी समाचार तैयार किए जाने तक 98 रूपये की गिरावट के साथ 94,510 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना दिन के कारोबार के दौरान 0.47% की तेजी के साथ $2,367.90 प्रति औंस पर था। वहीं अंतर्दिवसीय कारोबार में चांदी भी 4.09% की तेजी के साथ $31.75 प्रति औंस के स्तर पर चल रही थी। विजय भूषण जी, आप कोई क्विक कमेंट करना चाहेंगे सोने के मूल्य के बारे में?
देखिए, पहले ये होता था कि जब शेयर बाजार गिरता था तो सोना बढ़ता था, क्योंकि लोग निवेश फिर उसमें सोने में करना चाहते थे। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि वो शेयर बाजार भी बढ़ रहा है और सोना भी बढ़ रहा है, साथ साथ चांदी भी बढ़ रही है। तो ये और अगर आप देखिए, ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं है, ये एक इंटरनेशनल चीज है।
जी, चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। विजय जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए।
And before we close, a reminder of the headlines. Indian benchmark indices remain in consolidation mode after hitting record highs in the previous session. Sensex down 220 points, Nifty below 22,900. Goldman Sachs raises India's GDP growth forecast to 6.7% for 2024. And oil prices steady at OPEC Plus restraint balances interest rate concerns. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.